તારીખ 24/12/1992 શ્રી સમયસર કળષ્ટિકા શ્લોક નંબર 64 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 41 મૂળ કેસેટમાં અવાજ દબાઈ છે.
સમયસર કળષ્ટિકા શ્લોક સંખ્યા 68 આખરી ભાવાર્થ મેં સારે શ્લોક કા ભાવ ક્યા હૈ ક્યા કહેના ચાહતે હૈ. દ્રવ કર્મ અનેક પ્રકાર કા હૈ. શ્લોક કા વિષય ક્યા કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કે ઓર મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ કે બાહ્ય ક્રિયા એક સી હૈ और शुभाशुभ परिणाम भी दोनों को चलता है. मिथ्या दृष्टि को बंद होता है और सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है. ऐसा क्यों इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं राजमुनि पंडित. भावार्थ इस प्रकार है कि द्रव कर्म अनेक प्रकार का है. 8 प्रकार के ननावरणी दर्शनावरणी आदि 8 प्रकार के द्रव कर्म है. उसका उदय अनेक प्रकार का है और प्रकृति विभिन्न होने से उसका उदय भी अनेक प्रकार का है. एक कर्म ऐसा है कि जिसके उदय से शरीर होता है वो नाम कर्म है. जिसके उदय से शरीर होता है एक कर्म ऐसा है कि जिसके उदय से मन वचन काय होता है वो भी नाम कर्म की पिता प्रकृति है. और एक कर्म ऐसा है कि जिसके उदय से सुख दुख होता है वो साता साता वेदनी की प्रकृति है. ऐसे अनेक प्रकार के कर्म का उदय होने पर मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है. इससे राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं. उनके द्वारा नूतन कर्मबंध होता है. क्यों मिथ्या दृष्टि को कर्मबंध होता है इसका कारण दर्शाया. क्या बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है. ये मेरा कर्म का उदय है. मुझे ऐसा ऐसा कर्म का उदय चल रहा है तो उसका जो भाव है मिथ्या दृष्टि जीव का वो तो उदय के साथ प्रतिबंध को प्राप्त होता है. क्या प्रतिबंध को प्राप्त होता है. ये मेरा उदय है इसलिए उनको या तो राग होवे या तो द्वेष होवे ऐसे व्यामोह से उनको राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं. कर्म के उदय में अपनापन जाना यही व्यामोह है. यही मोह है और ये मोह होने से राग और द्वेष दो में से एक तो उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं. जिसको मोह होता है उसको राग द्वेष होता है. जिसको मोह नहीं होता उसको कर्म का उदय होने पर भी राग द्वेष नहीं होता. तो कर्मबंध होने का कारण यह है कि मोह भाव है. जैसे सर्वज्ञ वितराग है उसको शुभ कर्म का तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो बहुत है. इतना शुभ का उदय तीर्थंकर प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट उदय शुभ का तीर्थंकर के अलावा किसी को हो ही नहीं सकता. फिर भी मोह नहीं है तो उनको राग द्वेष नहीं होता. ये समोसरण बहुत अच्छा बना है ऐसा वितराग को नहीं होता है. समोसरण में आने वाले मोही जीव को होता है तो बहुत सुंदर बना है उसको राग होगा समोसरण का भी. और कईयों को तो इतना राग होता है कि वो श्री मंडप तक पहुंचते भी नहीं, भगवान की वाणी सुनने तक नहीं पहुंचते। शुरू की जो बहुत प्रकार की रोशनी आदि है उसमें वो अटक जाते हैं, देखने के लिए रुक जाते हैं। जैसे अपन कोई महोत्सव करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के वो लगाते हैं ना, जिसमें पुराणों के जो है चित्र है और मूर्तियां हैं, बावला है सब। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है तो चलता फिरता भी बताते हैं। वहां तो पुण्य की प्रकृति बहुत है, इधर तो कुछ नहीं है इसको सामने। तो बहुत से प्रकार के देखने लायक चीज भी होती है समस्करण में, वो देखने में रुक जाते हैं। तो ये राग हुआ, क्यों हुआ कि मोह है इसलिए राग है। भगवान को राग नहीं होता क्योंकि मोह नहीं है इसलिए, और मुनियों को नहीं होता, मुनि देखने को रुकते नहीं है। तो क्या बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय को आप रूप अनुभवता है, इससे किससे कि आप रूप अनुभवता है इससे उनको राग द्वेष मोह परिणाम होते हैं, और उनके द्वारा ऐसे परिणाम, ये मलिन परिणाम है राग द्वेष मोह के, उनके द्वारा उनको नूतन कर्म बंद होता है, नई कर्म का उनको बंद होता है। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव अशुद्ध चेतन परिणाम का करता है। तो कर्म का उदय को आपरूप अनुभव करने से मिथ्या दृष्टि जीव को जो अशुद्ध परिणाम हुआ वो उसका चेतन का परिणाम है, वो धड़का नहीं है लेकिन वो चेतन का परिणाम है, उनका वो कर्ता होता है। क्यों कर्ता होता है इसका कारण देंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। जो शुद्ध स्वरूप से मैंने शुद्ध स्वभाव से राग द्वेष कर नहीं सकते, स्वभाव द्वारा राग द्वेष किया नहीं जाता, कर भी नहीं सकते, स्वभाव द्वारा राग द्वेष करना ही अशक्य है, ऐसे अपने मूल स्वभाव को मिथ्या दृष्टि जानता नहीं पर अनुभव करता नहीं। जानता नहीं इसका मतलब इसका अनुभव नहीं है, उसको जानकारी तो हो सकती है मिथ्या दृष्टि जीव को शास्त्रों की पढ़ाई होवे तो, लेकिन वो अनुभव करता नहीं है अपने स्वरूप को। तो मिथ्या दृष्टि जीव अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव नहीं करता है, इसलिए तो अशुद्ध चेतन परिणाम का कर्ता होकर के परिणमता है, कर्ता बुद्धि लेकर के परिणमता है, कर्ता बुद्धि सहित परिणमता है, और कर्म के उदय को भी आपरूप जानता है। वो तो कर्म के उदय को भिन्न रूप नहीं जानता है, मेरा नहीं है वो उदय, कर्म का उदय कर्म में है मेरा नहीं है, ऐसा नहीं जानता। ऐसी बात है, कर्म का उदय व्यवहार से तो इनका है क्योंकि वो दूसरे का नहीं है। जैसे समोषण का उदय तीर्थंकर देव को है, दूसरों के लिए होने पर भी उनका नहीं है, लेकिन वो अपना नहीं जानते, होते हुए भी उसमें वो अपना है ऐसा अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो नहीं है, वो नहीं है तो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो उसको बंधन भी नहीं होता। इसलिए कर्म के उदय कार्य को आपरूप अनुभवता है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि के कर्म का उदय है उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के भी है, किंतु पूर्व कर्म तो दोनों को संचित कर्म तो है पूर्व का, दोनों को अपनी जो गति है उसी के अनुसार कर्म का उदय आएगा। मनुष्य में मनुष्य के लायक उदय होगा, नारकी में नारकी के लायक उदय होगा, देव में देव के लायक होगा। तो सम्यक दर्शन होने से कोई पूर्व कर्म में उदय में फर्क हो जाए ऐसा कोई बनता नहीं है। तो जैसा मिथ्या दृष्टि को उदय आता है वैसा ही सम्यक दृष्टि को आता है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। जब उदय आता है उस वक्त भी उसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि शुद्धोपयोग में सम्यक दृष्टि जब रहे तभी उसको अनुभव हो और जब शुद्धोपयोग में नहीं रहे तब अनुभव नहीं रहे, ऐसा नहीं है। क्या कहना है से मानते हैं तो शुद्धोपयोग में आया उस वक्त तो अनुभव में है, तो शुद्धोपयोग नहीं है तो सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव तो नहीं है। फिर तो मिथ्या दृष्टि की तरह ही राग द्वेष कार्यक्रम हो दर्शन हो तो व्यतीत हो गया, मतलब बोल नहीं सकते दर्शन हो है। लेकिन राग द्वेष और मोह चारित्रम हो और सब प्रकार के कार्य संसारिक कार्य दृष्टि के भी देखे जाते हैं, प्रत्येक तौर से देखे जाते हैं। तो कहते हैं कि उनको ऐसा होने पर भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव भीतर में है, क्योंकि शुद्धोपयोग तो प्रतीत होता है और वो भी सेकंड के कुछ अंश में होता है, उतना काल कम है। तो क्या बाकी के काल में वो मिथ्या दृष्टि हो गया है? स्वाद तो कितना ठीक है, नहीं परिणति रहती है, अनुभव रहता है। मैं तो कहते अनुभव है, अनुभव का स्वाद ऐसा नहीं कहा, क्या अनुभव है ऐसा कहा, क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। नहीं अनुभव है ऐसा, अनुभव का ख्याल है, अनुभव का स्वाद है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, अनुभव है ऐसा लिखा है। अनुभव निर्विकल्प अवस्था उपयोग की है वो, और ये निर्विकल्प अवस्था परिणति की है। क्या वो उपयोग की है और ये परिणति की है, परिणति निरंतर रहती है। सम्यक दृष्टि जीव को भी ज्ञान चेतना निरंतर है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि को अज्ञान चेतना होती ही नहीं। क्या सम्यक दृष्टि, जब चेतना का दो भेद है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना, तो सम्यक दृष्टि को तो ज्ञान चेतना ही निरंतर होती है, कभी भी अज्ञान चेतना एक समय के लिए भी होती नहीं है। तो ज्ञान चेतना में क्या है? ज्ञान चेतना में ज्ञानानुभव है, परिणति रूप है, उपयोग भले ही शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति में हो सकता है, उसको शुभोपयोग कहते हैं, अशुभ उपयोग कहते हैं, फिर भी परिणति में शुद्ध स्वरूप का अनुभव निरंतर चलता है। नींद में भी, जागृति में तो है लेकिन नींद में भी उसकी परिणति चालू होती है। लब्ध उपयोग का प्रकरण तो देखा होगा पंचाध्याय में, लब्ध और उपयोग दो अलग अलग है। गुरुदेव तो क्या कहते थे कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान की पर्याय के दो भाग है, क्या कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे दो भाग?
अभी भी टेप में तो सुन सुनता हूँ। जब दो भाग है तो एक भाग है वो बहिर्मुख है और एक भाग है वो अंतर्मुख। जो अंतर्मुख है उसमें अनुभव है, दृष्टि जीव को शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। इस कारण कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है और आप को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। देखो क्या बोले, दो भेद पड़ गया, पर को पर अनुभवते हैं और अपने को शुद्ध स्वरूप अनुभवते हैं, बस खत्म बात होगी। इसलिए कर्म के उदय में नहीं रंजायमान होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय में रंजायमान नहीं होता, उसको रस नहीं आता। जैसे हम रास्ते पर से गुजरते हैं और कहीं किसी की शादी हो तो कई प्रकार के लाइटनिंग वगैरह चलता है, या मुसलमान के त्यौहार हो तो मस्जिद में उनकी धार्मिक धमाल चलती है। अपन क्या उसमें समझे, अपने को कोई लेना देना है नहीं, है भाई कुछ है वहां, उसका न अपने को कोई राग होता है न कोई द्वेष होता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि जीव के कहलाने वाले उदय को क्या लोग क्या जानेगा, यह इसका उदय है। ये मुनिराज को उपसर्ग हुआ, क्या बोलेंगे, मुनिराज नहीं मानते मेरा उपसर्ग। मुनिराज अगर ऐसा जाने के लिए मेरे पर उपसर्ग हुआ तो उसको द्वेष हुए बिना रहेगा, लेकिन वो अपना जानते ही नहीं कर्म का उदय को, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो वो अपना नहीं जानते। कर्म का उदय कर्म में है, संयोग संयोग में है, मैं असंग तत्व हूँ, मेरे को कोई लेना देना। सम्यक दृष्टि जीव को कर्म के उदय को कर्म जाति रूप अनुभवता है और अपने आप को शुद्ध स्वरूप अनुभवता है। शुद्ध स्वरूप का मतलब क्या है कि मुझे कुछ उदय के साथ संबंध मेरा नहीं है, उदय मेरा नहीं है, उदय मेरा नहीं। नारकी को ये लगता है ये नरक का जो प्रतिकूलता का उदय है वो मेरा नहीं है, ऐसी बात है। ये भाव ही मेरा नहीं है, ये भाव को अपना भाव जानते ही नहीं, अपने को तो शुद्ध आत्मा जानते हैं, नारकी नहीं जानते निरंतर। आप अपने को मनुष्य निरंतर जानते हैं, ये कभी कभी जानते हैं, बस जब आप अपने आप को मनुष्य निरंतर जानते हैं मिथ्यात्व अवस्था में, तो सम्यक दृष्टि निरंतर अपने को शुद्धात्मा जानते हैं। अनुभव हमें तब शुद्धात्मा जाने और फिर मनुष्य जाने कि मैं तो मनुष्य हूं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ तब से ही मैं मनुष्य नहीं हूं, ऐसा मनुष्यपना का भाव छूट गया। योग्यता रहेगी शरीर की आदि की, अपना स्वामित्व छूट गया, भाव छूट गया, अभिप्राय बदल गया, सारा का सारा सिद्ध समान सदा पर जीरो, सदा शब्द लिया ने, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ये समीर दर्शन में ऐसा होता है कि सदा मैं सिद्ध समान हूं, सदा मैं तो भूतकाल भी आ गया, चार समूह में जो भी अशुद्धि रह गई है चारित्र मोह की, उतना भाव आता है और उस भाव से वो अपने को भिन्न जानते हैं। क्या उनको भी एक न्याय से ज्ञान का नहीं जानते हैं, उपादेय नहीं जानते हैं, चारित्र की अपेक्षा उपादेय नहीं जानते, चारित्र की अपेक्षा है ही जानते हैं, पर ज्ञान की अपेक्षा नहीं जानते, बस बात खत्म। ये हालत है। दूसरे को मारने का भाव आ गया, तो मैं मार सकता हूं ऐसा ज्ञान नहीं है, ये मारने का विकल्प बेकार है ऐसा ज्ञान है। क्या विकल्प विकल्प में है, क्रिया क्रिया में है, मैं मेरे में हूं, मैं दोनों में से एक में भी नहीं हूं, हाँ ऐसा भाव रहता है। चक्र तो चलने वाला था तो चला, और वापस आने वाला था तो वापस आया, चला भी और वापस आया भी, क्योंकि खुद का भाव तो नहीं था वापस लाने का, क्यों वापस आया? अगर भाव के अनुकूल कार्य होता तो वापस नहीं आता, वो उनका अधिकार है, भाव का कोई अधिकार नहीं है। ये द्रव्यान योग का विषय स्वच्छंद करने के लिए नहीं है, कितना लाल बत्ती रखना है, रेड लाइट, क्या कि ऐसी बात सुन करके या पढ़ करके कहीं भी किसी मनुष्य को स्वच्छंद का पोषण नहीं करना है। मनुष्य वो है जिसको पूर्ण शुद्धता चाहिए, तो जिस बात से अशुद्धि हुए पसंद हुए तो मुझको अंगीकार करने वाला नहीं है, उस बात को ये ध्यान में रखने की चीज है, वरना तो कर दे, मारने का भाव करे, मैंने नहीं किया, चरण की क्रिया मेरी नहीं, ऐसा नहीं चले। आपको शुद्ध स्वरूप अनुभवता है, इसलिए कर्म के उदय में नहीं रंजायमान होता है। देखो भाव तो हुआ लेकिन रंजायमान नहीं हुआ, देखो क्या बात है। कोई कड़वी दवा पीते हैं क्या रंजायमान होते हैं? हैं? ये पीनी पड़ती है, क्या पीनी पड़ती है, पीनी नहीं है लेकिन पीनी पड़ती है, ऐसा समय दृष्टि का समझना, को रंजायमान नहीं होता। इसलिए मोहराग स्वरूप नहीं परिणमता है, रंजायमान नहीं होता है इसलिए मोहराग स्वरूप नहीं परिणमता है, और इसलिए कर्म बंध नहीं होता, उसको रस नहीं आता, रस नहीं आता तो निरस परिणाम से कर्म बंद होता नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं है, ऐसा विशेष है। क्रिया होने पर भी और चारित्र मोह के जो रागादि अंश है उससे भिन्न परिणमते हैं, इसलिए तो अशुद्ध परिणाम के कर्ता नहीं है, एकत्व भाव से नहीं परिणमता है, भिन्न रह जाते हैं, तो भिन्नपणा में कर्तापणा नहीं होता, कर्तापणा होता तो भिन्नपणा नहीं रहता, एकत्व हो जाता है, ऐसा विशेष है। विशेष में अंतर है, दोनों की क्रिया एक सी है फिर भी एक को कर्मबंध होता है एक को कर्मबंध नहीं होता है, अगर परिणाम एक सा होता तो ऐसा बन सकता नहीं। तो परिणाम में अंतर है, वो बात समझनी चाहिए कि किस प्रकार का अंतर है जिससे कर्मबंध नहीं होता। अगर परिणाम भी एक सा हो गए और क्रिया भी एक सी हो गए तो फिर एक को ज्ञानी कहना एक को अज्ञानी कहना ये बात ही फालतू है। इसको कहने के बाद हो गई, ऐसा नहीं होता। दोनों के परिणाम में बहुत बड़ा अंतर है। ये सारा 68 कलश का भावार्थ यही है। तो इस बात को राजमल जी ने इस तरह से खोला है इस विचार में, जीव बाह्य दृष्टि से सिर्फ बाह्य क्रिया को देख करके ज्ञानी अज्ञानी का नाप करते हैं, और ऐसी बाह्य दृष्टि से कभी ज्ञानी की पहचान नहीं होती। और जब तक ज्ञानी की पहचान नहीं होती है वहां तक सम्यक दर्शन होने का मूल कारण है वो पैदा नहीं होता। ज्ञानी की पहचान होना सम्यक दर्शन होने का मूल कारण है। अभी अनंत काल में अनंत सम्यक दृष्टि हुए, उसमें एक भी सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं हुआ कि जिसको ज्ञानी ने पहचाना, ज्ञानी को पहचाना नहीं और सम्यक दर्शन हुआ हो, ऐसा एक भी जीव नहीं है। सभी ने पहले दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचाना, पहचानने की योग्यता प्राप्त किया, बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ है। इसके पहले कभी किसी को हुआ नहीं, ये बात है। फिर ज्ञानी हो, मुनि हो, इंद्र देव हो, लेकिन सजीवन मूर्ति की बात है। बिना सजीवन मूर्ति किसी को भी ज्ञान हो सकता, ये नियम बद्ध है। तो अगले भाव में उसको मिले थे पूर्व भाव में, और पूर्व भाव में भी उन्होंने पहचाना, स्वभाव के संस्कार ग्रहण किए थे, पर फिर इस भाव में बिना ज्ञाने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। निसर्गात जो है, सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, निसर्गात अधिगमात्मा। तो जो निसर्गात होता है वो पूर्व भाव में ज्ञानी को उसको भेंट हो गई है, पर संस्कार ले चुके हैं, भेंट वो उतना ही बात नहीं है, वहां से संस्कार लिया जैसे गुरुदेव को, ऐसा बन सकता। पूर्व भाव में उसको कोई सजीवन मूर्ति मिली है, बहुत तत्वरुचि से, आत्मरुचि से उन्होंने अध्यात्म के संस्कार, स्वभाव के संस्कार ग्रहण किए हैं, नाम लिखा है डायरी में। फतेह कुमार को अध्यात्म तत्व की बहुत रुचि थी। क्या लिखा था? फतेह कुमार को अध्यात्म तत्व की बहुत रुचि थी, ऐसा लिखा है हमारे गुरुदेव के जीव से ना, फतेह कुमार था बहुत रुचि थी ऐसा लिखा है। तो जब तत्व की बहुत रुचि होती है, अध्यात्म की बहुत रुचि है, अध्यात्म तत्व की, उसको संस्कार डल जाता है। पर ये अध्यात्म तत्व सुनाने वाले सजीवन मूर्ति चाहिए, चाहे सर्वज्ञ देव हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे सत्पुरुष हो। तो फिर संस्कार डल जाने से दूसरे भाव में आवश्यकता नहीं रही कि कोई ज्ञानी मिले, लेकिन कारण जो पैदा हुआ तो बिना ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, ये सिद्धांत सिद्ध करने की बात है। इधर तो अनंत प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं, परोक्ष तो अनंत है, अभी एक नहीं, परोक्ष तो जितने हुए इतने अनंत परोक्ष है, इससे क्या मतलब। मिलना चाहिए। भेद होने का मतलब भी प्रत्यक्ष का ही है। और आगे बढ़कर के बात कहते हैं अभी कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे निरंतर क्या सदुपयोग हुए सबने, निरंतर शुद्ध चैतन्य मात्र अपने चैतन्य नहीं करते हैं।
कोई भी कहीं भी कोई भी ज्ञानी हो, चारों गति में अपने स्वरूप में तन्मय है, अपने स्वरूप में निवास करते हैं। लड़ाई में खड़े ही नहीं है, अपने स्वरूप में खड़े हैं। लड़ाई में है ही नहीं, ऐसी बात। वे ही जीव अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद करते हैं। वे जीव साक्षात अमृतम, साक्षात अमृत को पीते हैं, अत्यंत सुख का आस्वाद करते हैं। उनको धारावाही रूप में अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद होता रहता। ये तो कहा सुगानी जी ने दृढ़ दृष्टि प्रकाश में कि सौधर्म इंद्र है, वो भगवान के जन्मोत्सव में इतना विनम्र हो जाता है भगवान के पास। भगवान तो अब आगे होने वाले हैं, लेकिन अभी तो चतुर्थ गुण स्थान में बाल्यावस्था में है ना, तो वहां तो चतुर्थ गुण स्थान होता है। वहां मुनिपणा का भी नहीं और सर्वज्ञ का पणा का तीर्व गुण स्थान भी वहां नहीं होता। फिर भी भावी पर्याय को देखता है, वर्तमान में क्या देखता है, भावी पर्याय को निगम नहीं से भगवान देखता है। और उतना विनम्र हो जाता है के अपने पैरों में वो घुघड़े बांध करके नृत्य करने लगता है। लोग ऐसा जानता है ये इंद्र जैसा महान पुण्य का तो महान साथ है ना उसको, ये महान इंद्र जो है वो भगवान के पास नृत्य करता है, बहुत खुशी हो गया है क्या, बहुत खुशी में नृत्य करता है। लेकिन वो क्या जानता है कि उसको हर्ष भाव में दुख मालूम पड़ता तो किससे वो मिलन करता है। लोग तो देखते हैं कि उस समय राजी राजी हो गया है तो कहने उसको दुख भाव मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो अमृत की परिणति है ना, ये अमृत के कारण है। जो आत्मा का अमृत है, आनंद अमृत है, वो आनंद के साथ मिलान करके कहते हैं कि ये दुख भाव है, ये सुख नहीं है। ऐसी बात है, वरना किससे मिलान करें, परिणति नहीं हो आनंद की तो किससे मिलान करेंगे। वो तो आत्मा नहीं नाचता है, शरीर नाचता है। ऐसी बात है, जो शरीर नाचता है वो आत्मा नहीं है, वो इंद्र नहीं है, बोलता कि वो मेरा बड़ा स्वरूप नहीं है। वो जो भी भगवान की भक्ति का भाव है, शुभ भाव, और भक्ति के अनुसार जो नृत्य की क्रिया है वो तो दोनों में नहीं हूँ, ऐसा भेद ज्ञान चलता है वहाँ।
क्या चलता है?
उसका निषेध चलता है वहाँ। ये भीतर की कौन जाने, आप तो ये कहोगे कि जब घर में कोई लड़का सज्जन मर जाता है तो फिर तेरहवें के दिन लड्डू क्यों खाता है? अगर उनको लड्डू खाने में सुख नहीं है तो लड्डू क्यों खाता है बताइए? पर खाता है तो क्या सुख है क्या इसमें? हाँ, कि उनको लड्डू का कोई रसा था नहीं आता तो खाता क्यों? खाना पड़ता है, नहीं खा रहे तो खाना पड़ता है, ऐसी बात है। अच्छा, उदासीन है भीतर में, उदासीन है। किसी को दुखी होना अच्छा लगता है क्या? है तो सुजन के मृत्यु के पास पीछे रोते के नहीं रोते हैं, फिर उसको शांत करते हैं, आपको नहीं रोना चाहिए, तो भी क्या बोलेगा कि बात तो सही है आपकी, रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, रुदन आ जाता है, लाना नहीं पड़ता लेकिन आ जाता है। मरने वाले की स्मृति है, उस स्मृति के साथ रुदन हो जाता है, करना पड़ता तो हो जाना दूसरी बात है, और अपने उत्साह से करे वो दूसरी बात है। तो ये हो जाता है, करते नहीं, ऐसी बात है। अवसाद स्वसात नहीं है, अवसात है, अवश्य परिणाम उसको कहते हैं, स्वश परिणाम कहते हैं। क्या कहा? जो कोई जीव निरंतर शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में तन्मय हुए हैं, तिष्ठते हैं, वे ही जीव अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद करते हैं। ऐसे जीव अतीन्द्रिय सुख का निरंतर आस्वाद करते हैं। क्या करके? कि नए पक्षपात मुक्त वा, दूसरी बात तो एक दफे एक बाजू रखो, लेकिन वो नए का भी पक्षपात करता, नए का भी पक्षपात नहीं करता वो। नहीं का पक्षपात मैंने क्या कि द्रव्य पर्याय रूप विकल्प बुद्धि, क्या विकल्प अकेला नहीं है रखा, मिथ्या दृष्टि है ना, तो द्रव्य का विकल्प करता है तो उसको विकल्प की बुद्धि रहती है, पर्याय का विकल्प करता है तो पर्याय की बुद्धि रहती है, विकल्प की बुद्धि रहती है। उसके एक पक्ष रूप अंगीकार द्रव्य का या पर्याय का किसी एक पक्ष का अंगीकार करके उस ऐसा पक्षपात को अंगीकारपना उसको छोड़ करके सम्यक दृष्टि नए का पक्षपात करते नहीं, पर्यायार्थिक नहीं का तो पक्षपात नहीं करें, लेकिन द्रव्यार्थिक नहीं का भी पक्षपात नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पक्षपात थोड़ा तब तो अनुभव हुआ, पक्ष में रहा वहां तक अनुभव हो सकता, ऐसी बात है। क्यों? कि एक अंश का पक्ष करने से राग होता है, एकत्व बुद्धि का, एकत्व बुद्धि समेत राग होता है, परमा शुद्धात्मा का अनुभव संभव। कैसे हैं वे जीव? सम्यक दृष्टि जीव, वे मैंने सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैं? के विकल्प जारक चित शांत चित्ता एक सत्व का अनेक रूप विचार। विकल्प में क्या होता है कि चीज तो एक है पर उसके विचार अनेक करते हैं। आपका प्रश्न क्या था कल, कोई ऐसा प्रकार करता है, कोई ऐसा प्रकार करता है कि नहीं, सब प्रकार को छोड़ते हैं, ऐसा ऐसी बात है। एक सत्व का अनेक रूप विचार उससे रीत हुआ है। निर्विकल्प समाधान मन जिनका ऐसे है, तो एक सत्व का अनेक रूप विचार उस विचारों से रहित हुआ है और निर्विकल्प शांत चित्ता लेना। शांत का अर्थ ही निर्विकल्प किया, किंतु विकल्प में अशांति है, विकल्प में शांति नहीं है। इसलिए निर्विकल्प समाधान मन जिसका हो गया है, कोई विकल्प की जरूरत नहीं, विकल्प की आवश्यकता नहीं। मूल आत्मस्वरूप है वो निर्विकल्प है, स्वरूप से निर्विकल्प है, सामर्थ्य रूप है ना, सामर्थ्य रूप है इसलिए निर्विकल्प है। तो उसके आश्रय से परिणाम में निर्विकल्प हो गया, फिर कोई विशेषता को लेकर के विकल्प उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हैं सम्यक दृष्टि जीव, कैसे हैं कि एक सत्व का अनेक रूप विचार उससे रहित हुआ है जिसका मन और निर्विकल्प हो गया है, समाधान हो करके तो असमाधान रहा। ऐसे हैं इसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसको आखिरी पंक्ति का भावार्थ कहेंगे, हमें बात खोलेंगे उसको, कि जो एक सत्वरूप वस्तु है उसका द्रव गुण पर्याय रूप उत्पाद में द्रव रूप विचार करने से करने पर विकल्प होता है। वस्तु एक भेद है और इनके ऐसे 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 जो विचार करे तो उसमें विकल्प बहुत उत्पन्न होता है। पिछले विकल्प को जो चर्चा चली थी ऐसा ही बात हुआ, तो जब किसी वस्तु को समझ में लेनी पड़ती है तो उसका द्रव्यमान पर्याय उत्पाद विद रूप देखना पड़ता है और अनुभव करने जाओ तो उसी को निश्चित कर देना पड़ता है, तब अनुभव होता है, उसको साथ लेकर के अनुभव होने वाला नहीं है। तत्व के अन्वेषण काल में युक्ति मार्ग से तत्व को जाना जाता है, अतः रहस्यपूर्ण शिक्षा में तत्व अन्वेषण काल है, युक्ति मध्य युक्ति के मार्ग से तत्व को जानने में आता है। नो आराधन समय आराधना के समय में ऐसी बात, तो ये बात पलट जाती है सारे के सारे। आराधना के बाद दूसरी है, पहचान करने की बात दूसरी है, दोनों बातें दूसरी अलग अलग है, एक बात नहीं, एक प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती वहां। भावार्थ इस प्रकार है कि जो एक सत्वरूप वस्तु है उसका द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद हुई ध्रुव रूप विचार करने पर तो विकल्प होता है और उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है। क्या विकल्प के होने पर मन में आकुलता उत्पन्न होगी? होगी और होगी ही, और जो आकुलता है तो दुख है, जितना विकल्प ज्यादा उतनी आकुलता ज्यादा। देखिए वो स्वास्थ्य का वांछन है, स्वाध्याय है, तो हम स्वाध्याय करते हैं तो बहुत करना कि नहीं करना, हाँ, तो विकल्प बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नहीं करना है विकल्प को शांत करने के लिए स्वाध्याय करना है, अगर करना है तो, वरना करने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वाध्याय करो तो भी विकल्प शांत करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है। मन आकुल होता है और आकुलता है तो दुख है, इसलिए वस्तु मात्र के अनुभवने पर विकल्प मिटता है। निर्विकल्प वस्तु है उसका अनुभव करने से विकल्प मिटता है, विकल्प के मिटने पर आकुलता मिटती है और आकुलता के मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है। ऐसा कोई जीव सुखी नहीं है जो शुद्ध स्वरूप का, निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव करने वाला सुखी है, ऐसा जगत में कोई सुखी नहीं। 70 लाख की आबादी में मैं अकेला सुखी, ये इस तरह से बात है। क्योंकि विकल्प छूट जाता था, निर्विकल्प परिणति चलती थी, ऐसी बात है। वस्तु का जो स्वरूप आत्म स्वरूप, तो स्वरूप निर्विकल्प है क्योंकि सामर्थ्य का पिंड है, ज्ञान आदि शक्तियों के सामर्थ्य का एक पिंड है, वो तो निर्विकल्प है। पर मैं ऐसा हूं, ऐसा जो भाव आवे, भाव आता है स्वरूप को लक्ष्य में रख करके, ज्ञान में रख करके, तो परिणाम का तो ऐसा स्वभाव है कि जिसका अवलंबन लेवे वैसा हो जावे, उसी रूप हो जावे, सदाकार हो जावे, तद्रूप हो जावे, ये परिणाम का स्वभाव है। तो इसलिए निर्विकल्प स्वरूप का आश्रय और अवलंबन से परिणाम भी निर्विकल्प हो जाता है। निर्विकल्प होने से विकल्प मिट जाते हैं, विकल्प मिट जाने से आकुलता मिट जाती है, आकुलता मिट जाने से दुख मिट जाता है, पर दुख मिट जाने से सुख की तो सहज सुख स्वरूप होने से सुख की सुख का अनुभव होता है। इससे अनुभवशीली जीव सुखी है उतना नहीं लिखा, क्या लिखा, परम सुखी है। अनुभवशीली जीव परम सुखी है, अकेले सुखी नहीं है लेकिन
परम सुखी
है। इसलिए जगत में सेठ साहूकार राजा मनुष्य लोग में वो भी सुखी इतने नहीं होते, और देव लोग के देव और इंद्र की संपदा के कारण इंद्र भी इतने सुखी नहीं होते, ऐसी बात। इसलिए परम सुखी कहे कि ऐसा सुख संसारी प्राणी को कभी होता, और वे तो प्रवचन करते थे तब प्रवचन के प्रारंभ में कभी कभी ऐसे कहते थे कि जिसको सुखी होना है उसके लिए ये बात कहने में आती है, जिसको सुखी होना है उसके लिए, सुखी मैंने काय कहते सुखी कि आत्मा में से जो सुख गुण है, विकल्प का अभाव रूप जो निर्विकल्प सुख है, उसी की बात चलती है। ये कोई स्वर्ग का सुख की बात के, कोई श्रीमंताई का सुख की बात है, ऐसी बात नहीं। कोई नहीं समझते तो ऐसा बोलेगा, सुखी होने की बात है तो हमको तो सुखी होना ही है, क्या तुमको बहुत अच्छे वैभव मिल जावे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जीव सचेतन पदार्थ है, जितना वो अचेतन पदार्थ का रस लेता है उतना उसको दुख होता है, या अपने से भिन्न पदार्थ में जितना रस लेता है उतना उसको दुख बढ़ता है, और भिन्न जान करके उसका रस छोड़ देता है और अपना आनंद अमृत का रस लेता है तो सुखी होता है। बस बहुत संक्षेप में सीधी सादी बात होती है तो हम तो चेतन है, असंग तत्व है, किसी दूसरे में हमें कोई रस नहीं है। सुंदर कलश है ये, साक्षात अमृतम पिबंती तयेव साक्षात अमृतम पिबंती। आनंद अमृत का नित्य भोजन करते, आनंदामृत नित्य भोजी, ऐसा आगे ऐसा कहेंगे कि कैसे है सम्यक दृष्टि जीव के आनंदामृत नित्य भोजी। निर्जरा का पहला है, निर्जराधिकार है ना, उसका पहला कलश ये है आनंदामृत नित्य भोजी। नीचे भोजन करता है निर्जरा का पहला नहीं, कोई किसी अधिकार का पहला ही है। बंद का पहला बंधाधिकार का पहला पद, तीसरा पद है ना आनंदामृत नित्य भोगी सर्वदावत्ताम उत्नातयत् निरोधारम्भनातलं निरुपदेनानं समुन्मज्जति। तीसरा पद है ना आनंदामृत नित्य भोगी। सम्यक ज्ञान कैसा होता है, सम्यक ज्ञान की स्तुति किया है, प्रशंसा किया है, आनंदामृत नित्य भोजी, आनंद अमृत का नित्य भोजन करने वाला होता है। अतीन्द्रिय सुख ऐसा है अपूर्व लब्धि, उसका निरंतर आस्वादनशील है। सुख ज्ञान कैसा है, क्या आनंद अमृत का नित्य भोजन करने वाला। इसलिए उनको साता में दुख लगता है, यही कारण है। इसकी बराबरी में साता का सुख भी
दुख लगता है,
दुख मालूम पड़ता है, सुख मालूम नहीं पड़ता। लौकिक में साता का सुख सुख मालूम पड़ता है, ये तो लोकोत्तर चीज है, लौकिक छोड़िए ऐसी बात है। બરકાર ઉપર પોતાની કાળજી ઉપર અને પોતાના મૂલ્યાંકન ઉપર આધારિત છે, એનું મૂલ્ય પોતે કેટલું આંકે છે। અરે તો આત્મારામ થયો, હું એવો અનુભવ કરું છું સમ્યક પ્રકારે, એટલે આત્માભિમુખ થઈને અંતર્મુખ થઈને બે વાત લીધી, સ્વસન્મુખ થઈને બધા એકાત્મા છે, એક આત્મા રામ થયો, આત્મામય થઈ ગયો, જ્યાં સમ્યક દર્શનાન ચારિત્ર પ્રત્યા શુદ્ધોપયોગી આ પ્રગટ થયો ત્યાં એ જીવ આત્મારામ થયો। 143મી ગાથામાં તો એ પરમાત્મા થયો, એમ પણ અમૃતચંદ્રાચાર્ય કહી દેશે કે પરમાત્મા થયો છે, આત્મારામ થયો ને પણ
પરમાત્મા
થયો, કેમ
કે હું પરમાત્મા છું એવો ત્યાં સાક્ષાત્કાર થાય છે, એવો ત્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. પોતાના પરમાત્મ પદનો પરમાત્મ પદ સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ અનુભવ સાક્ષાત અનુભવ થતો હોવાથી પરમાત્મા થયો એમ પણ કહેવામાં આવે છે. એસીમાં કહ્યું કે નહીં શ્રીમદજી, અમે આ કાળના 25મા તીર્થંકર છે, કોઈની કે રાડ નાખે આખું જગત. હે, 25મા તીર્થંકર ની વાત આવે તો આખો જૈન સંપ્રદાય બળવો કરે એની સામે, કરે કે નહીં? 25મા ની વાત કરો છો? એ આવા વીર પુરુષો હતા, એ કૃપાલુ દેવી બધા વીર પુરુષો કહેવાય. એને ઘોષણા કરી કે છું 24 ભલે થઈ ગયા, હું 25 નું અત્યારે બેઠો થઈ ગયા છું. કોણ કહી શકે સાચી વાત છે? એ કોઈ સાધારણ જે બોલી શકે નહી. હું તીર્થંકર થવાનો છું, હું તીર્થંકર છું તો કોઈ સાધારણ પ્રાણી બોલી શકે? આ સ્થિતિમાં પણ એટલી માનતા હોય છે અને આ કાળના અમે બીજા શ્રીરામ છીએ. પાત્ર અને મુમુક્ષુ જીવો માટે તો કલ્પ વૃક્ષ જ છીએ, કેવી કેવી રૂપમાં આપી છે પછી ખુલાસો કર્યો. આ કાંઈ પરમાત્માપણાને અભિમાનથી નથી લેતું, અનુભવ તો પરમાત્મા સ્વરૂપે થયો છે, પણ કઈ પરમાત્માપણાના અભિમાનથી આ કાંઈ વાત લખી નથી. પણ બીજા જીવોને દુઃખી થતા જોઈને, ધર્મના માર્ગે પણ અધર્મને પામતા જોઈને, ધર્મના રસ્તે આવેલાને પણ અધર્મને પામતા જોઈને કરુણાથી અમારું હૃદય રડી ઉઠ્યું છે. અને હૃદય રડી ઉઠ્યું એમાંથી આ પુકાર નીકળી છે. એટલે પરમ કારુણ્ય વૃત્તિ જેને કહેવામાં આવે છે, એ પરમ કારુણ્ય વૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવેલા એ રત્નામૃત છે. અને જેને જીવ્યા એનો છુટકો થઈ ગયો એના જીવ્યો. એ સમ્યક પ્રકારે એક આત્મારામ થયો, તે હું એવો અનુભવ કરું છું કે રશ્મિ થશે કે અનુભવ તો નિર્વિકલ્પ છે. આમ વિચારીએ તો અનુભવ તો નિર્વિકલ્પ તો છે નહીં, પણ એ વિકલ્પાતીત અને મનાતીત છે. તો એ વચનાતીત છે એ કહેવાની જરૂર નથી, કેમ કે વિકલ્પમાં આવે પછી વચનમાં આવે, એ પહેલાનું આવી શકે. છતાં પણ અહીંયા એક કિંચિત સમર્થ આચાર્ય ભગવાને વચન ગોચર કરેલું છે, એને વિકલ્પ ગોચર કે વચન ગોચર નહીં સમજતા, એનું વાચ્ય નિર્વિકલ્પ કેવું છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેટલી વાત ભૂમિકાની આવશે એ પોતાના અનુભવને આવશે. એ અનુભવ નિર્વિકલ્પ છે તો વિકલ્પ સહિત વિકલ્પ પુરસ્સર એ વચન ગોચર થયું છે. વચન ગોચર તો વિકલ્પ પુરસ્સર થાય છે, પૂર્વે એનો વિકલ્પ હોય છે, પણ વાંચે એનો નિર્વિકલ્પ છે. એટલું લક્ષમાં રાખીને પછી એ વિષય વધારે સમજવાનો છે.
ગુરુ